नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अमरीका ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए। रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग पर यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेनदेन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं।
Collaborate closely to maintain security.
सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल 2 देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले ईरान के 2 ड्रोन को रोक कर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। एक रिपोर्ट।
अमरीका की सैन्य कमान ने बताया है कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ये हमले हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान की ड्रोन गतिविधि की खबरों के बाद अमरीकी बलों के केशम द्वीप और गोरख में ईरानी रडार और निगरानी स्थलों को निशाना बनाने के कुछ घंटों बाद हुए। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच शांति के लिए प्रयास करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी कल ईरान पहुंचे। हाल के हफ्तों में ये उनकी ईरान की तीसरी यात्रा है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
रूस के अधिकारियों ने यूक्रेन में सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर हमले को अप्रत्याशित बताया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए। एक रिपोर्ट।
गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू हुई। इसराइल की सेना के प्रवक्ता ने बताया कि सेना ने आतंकवादियों को निशाना बनाकर हमला किया था, लेकिन उन्होंने नागरिकों के मारे जाने के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर अपना नियंत्रण बनाए रखा है। अमेरिका में कल रात ओहियो में टोलेडो में सामुदायिक गली महोत्सव के पास कई लोगों को गोली मार दी गई। संदिग्धों की तलाश जारी है। स्थानीय पुलिस को ओल्ड वेस्टर्न फेस्टिवल के पास गोलीबारी की सूचना मिली। सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। 7 साल बाद भारतीय महिला टीम ने एक बार फिर ट्रॉफी अपने नाम की। एक रिपोर्ट।
खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो काबुली आमने सामने होंगे। रूस की मीरा एंड्रीवा ने महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। कल फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा पोलैंड की माया चवस को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से हराया। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले 1992 में 18 साल की मोनिका सेलिस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उलान बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट में एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने भार वर्ग में कल स्वर्ण पदक जीते। इस प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 6 और पदक अपने नाम किए। 21 वर्षीय सागर जगलान ने फ्रीस्टाइल 74 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में तामिर मुखबंद को 15-4 से हराया। वहीं 22 वर्षीय जयदीप ने मुखबंद को पराजित किया और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर उसके जीत हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिला कुश्ती में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में 18 साल की काजल ने फाइनल में नाइजीरिया की अफ्रीकी चैंपियन दामोला उजा को 8-0 से हराकर 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुकी पहलवान प्रिया मलिक ने इसी वर्ग में मंगोलिया की तुफशिन जारगल ताराव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। जापान के काकामिगारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के 2 ड्रोन नष्ट किए। रूस के अधिकारियों ने सेंट पीटर्सबर्ग में यूक्रेन के ड्रोन हमले को अप्रत्याशित बताया। फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव का मुकाबला फ्लेविओ काबुली से होगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।